सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता। कारिका, चित्रम यथा श्रयमृते स्थाणवा दिभ्यो बिना यथा छाया तद्वद बिना विशेषैर न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम। अन्वय, यथा चित्रम आश्रयम रिते यथा छाया स्थाणवा दिभ्यो बिना तद्वत लिंगम विशेषैः विना निराश्रयम न तिष्ठति। कारिकार्थ, जिस प्रकार आश्रय के बिना चित्र और स्थाणु के बिना छाया नहीं रह सकती है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के बिना निराधार बुद्धि आदि नहीं रह सकते हैं। भाष्य, किम प्रयोजनेन त्रयोदश विधम करणम संसरत्ति त्येव चेदिते सति आह चित्रम यथा कुंड्याद्या श्रायमृते न तिष्ठति स्थाणवादिभ्य कीलकादिभ्यो विना यथा छाया न तिष्ठति तैर विना न भवति आदि ग्रहणाद्या था शैत्यम विना नापो भवन्ति शैत्यम वाग विना अग्निरूढ़ विना वायु स्पर्श विना आकाशम अवकाशम विना पृथ्वी गंधम विना तद्वत एतेन दृष्टांतेन न्यायेन विना अविशेषै अविशेषस्तन्मात्रै विना न तिष्ठति अथ विशेष भूतान्युच्यन्ते शरीरं पंचभूतम् अयम् विशेषिणा शरीरेण विना क्व लिंगस्थानं चेति क्व यदैव एकदेह मुञ्झति तदैवान्यामाश्रयति निराश्रयम् आश्रयरहितं लिंगं त्रयोदशविधं करणमित्यर्थ। गौड़पाद भाष्य का भावार्थ। गत कारिका में महदादिधि सूक्ष्म पर्यंतम के द्वारा सूक्ष्म शरीर के घटकीभूत महदादि तत्वों को सूक्ष्म शरीर से पृथक बतलाया गया है। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि सूक्ष्म शरीर से पृथक बतलाया गया है यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि सूक्ष्म शरीर की कल्पना ही व्यर्थ है, क्योंकि तत्संबंधित उद्देश्य की पूर्ति अहंकार एवं इंद्रियों की सहायता लेकर बुद्धि ही कर सकती है। प्रस्तुत कारिकाओं में अवयव स्थानीय बुद्धि आदि से भिन्न अवयवी स्थानीय सूक्ष्म शरीर की कल्पना क्यों आवश्यक है? इसे दोनों के आश्रय आश्रयी भाव संबंध के आधार पर सोदारण समझाया जा रहा है। जिस प्रकार चित्रकार भित्ति पत्थर लकड़ी आदि किसी आधार को प्राप्त किए बिना अपने मनःपटल पर अंकित चित्र को मूर्त रूप नहीं दे सकता है, सरल शब्दों में आधार के बिना चित्र नहीं खींचा जा सकता है, क्योंकि वह निराधार नहीं ठहर सकता है। स्थाणु आदि किसी स्थूल पदार्थ के बिना उसकी छाया नहीं पड़ सकती है। कारिकागत आदिपद से शीतलता के बिना जल तथा जल के बिना शीतलता उष्णता के बिना अग्नि तथा अग्नि के बिना उष्णता स्पर्श के बिना वायु और वायु के बिना स्पर्श आकाश के बिना आकाश तथा आकाश के बिना अवकाश की स्थिति असंभव बतलाई गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार आश्रय के बिना आश्रय की स्थिति संभव नहीं होती है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर रूप आश्रय के बिना बुद्धियादि आश्रयी नहीं रह सकते हैं। अतः संसरण रूप व्यापार के लिए बुद्धियादि से भिन्न सूक्ष्म शरीर की कल्पना करना निरर्थक नहीं है, अपितु सार्थक है, क्योंकि उनमें आश्रयाश्रय भाव संबंध है। इस प्रकार त्रयोदश करणों के लिए सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता बतलाकर आचार्य गौड़पाद अब सूक्ष्म शरीर के लिए स्थूल शरीर की आश्रयता सिद्ध करते हैं। विशेष स्थानीय पंच महाभूत से निर्मित स्थूल शरीर पंच भौतिक कहलाता है। जिस प्रकार बुद्धियादिकरणों को आधारभूत सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार निराधार सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के आश्रय से रहता है। वह एक स्थूल देह को छोड़कर तुरंत दूसरे देह को आश्रय बना लेता है। सूक्ष्म शरीर के संसरण का हेतु तथा प्रकार। कारिका, पुरुषार्थ हेतुक मिदम निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृते विभुत्व योगान नटवद व्यवतिष्ठते लिंगम। अन्वय, पुरुषार्थ हेतुकम इदम लिंगम निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृते विभुत्व योगात नटवत व्यवतिष्ठते। कारिकार्थ, भोगापवर्ग रूप पुरुषार्थ द्वय का हेतु यह सूक्ष्म शरीर धर्मादि निमित्त तथा तन्निमित्तक स्थूल शरीर के संयोग से प्रकृति की विभुत्व शक्ति के कारण नट की भांति व्यापार करता है, अर्थात नट के द्वारा धारण किए गए राम कृष्ण आदि नानाविध रूपों के समान सूक्ष्म शरीर भी देव मनुष्य पशु पक्षी आदि अनेक योनियों के रूप धारण करता है। भाष्यम् किमर्थम् तदुच्यते पुरुषार्थ कर्तव्य इति प्रधानम् वर्तते स च द्विविधम् शब्दाद्युपलब्धि लक्षणो गुणपुरुषांतरोपलब्धि लक्षणश्च शब्दाद्युपलब्धिर् ब्रह्मादिषु लोकेषु गंधादि भोगावपाप्तिः गुणपुरुषांतरोपलब्धिर् मोक्ष इति तस्मादुक्तं पुरुषार्थ हेतुकमिदं सूक्ष्म शरीरं प्रवर्तते इति निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन निमित्तं धर्मादि नैमित्तकं ऊर्ध्वगमनादि पुरस्तादेव वक्ष्यामः प्रसंगेन प्रसक्तया प्रकृतेः प्रधानस्य विभुत्व योगात् यथा राजा स्वराष्ट्रे विभुत्वाद्य दीक्षति तत् करोतीति तथा प्रकृतेः सर्वत्र विभुत्व योगा निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन व्यवतिष्ठते पृथक पृथक देह धारणे लिंगस्य व्यवस्थां करोति लिंगं सूक्ष्मः परमाणु भिस्तन्मात्रे रूपचितं शरीरं त्रयोदशविधकरणोपेतं मानुष देवतिर् योग निषु व्यवतिष्ठते कथम नटवत् यथा नटः पटांतरेण प्रविश्य देवो भूत्वा निर्गच्छति पुनर्मानुष पुनर्विदुषकः एवं लिंग निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन नोदरांतः प्रविश्य हस्ति स्त्री पुमान भवति। गौड़पाद भाष्य का भावार्थ। पिछली 39वीं कारिका से सूक्ष्म शरीर की महत्सत्ता के स्थापनार्थ अनेक प्रयास करते रहे, इससे सूक्ष्म शरीर का स्वरूप भी प्रकाश में आया। अब यह जिज्ञासा होती है कि सूक्ष्म शरीर किस कारण और किस तरह संसरण करता है। प्रस्तुत कारिका हमारी इसी जिज्ञासा को शांत करती है। श्रुति स्मृति के ग्रंथों में धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष चार पुरुषार्थ माने गए हैं। सांख्य योग दर्शन के आचार्यों ने उक्त चार को दो में सीमित कर दिया है। वे दो पुरुषार्थ भोग एवं मोक्ष हैं। भोग का अर्थ है विषयोपलब्धि अर्थात जागतिक पदार्थों से सुख दुख का अनुभव होना तथा मोक्ष का अर्थ है गुण पुरुषान्यतोपलब्धि अर्थात जड़ स्वरूप गुणवंश तथा पुरुष वंश का पृथक पृथक अपरोक्ष ज्ञान होना। आचार्य गौड़पाद ने उक्त दोनों उपलब्धियों को क्रमशः ब्रह्मादि लोक में गंधादि भोग की प्राप्ति तथा मोक्ष शब्द से कहा है। पुरुष को भोग और भोग के पश्चात मोक्ष प्रदान करने की शक्ति एकमात्र मूल तत्व प्रकृति में सन्निहित है, अतः शक्ति के अनुसार प्रवृत्ति का आश्रय भी वही प्रकृति है। इसलिए भाष्य में प्रधानम प्रवर्तते कहा है। इस संदर्भ में इतना विशेष ज्ञातव्य है कि प्रधान अपने उक्त उद्देश्य को सूक्ष्म शरीर के द्वारा पूर्ण करता है। इस प्रकार प्रधान से सुनियंत्रित होकर सूक्ष्म शरीर क्रिया युक्त होता है, अतः प्रधान का सहायक होने से कारिका में सूक्ष्म शरीर को पुरुषार्थ का हेतु कहा है। स्थूल शरीर का आश्रय लेकर यह सूक्ष्म शरीर प्रकृति द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को निभाता है। किस प्रकार यह स्थूल शरीर से संपर्क स्थापित करता है, यही कारिकागत निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन अंश के द्वारा बताया जा रहा है। धर्मा धर्मादि निमित्त और तन निमित्त स्थूल शरीर नैमित्तिक है, अर्थात धर्मादि निमित्त से उत्पन्न स्थूल शरीर को प्राप्त करने से यह सूक्ष्म शरीर संसरण करता है। निमित्त तथा नैमित्तिक पदों पर विशेष विचार अग्रिम 44वीं कारिका में किया जाएगा। अब सूक्ष्म शरीर के संसरण का प्रकार उदाहरण सहित बताया जा रहा है। जिस प्रकार राष्ट्र के अधिनायक की इच्छा का विघात कथम अपि नहीं होता है, क्योंकि वह विभुत्व शक्ति से संपन्न होता है। वह जिस समय जिस किसी भी कार्य की इच्छा करता है, उसी समय वह उस कार्य को करवा लेता है। उसी प्रकार सांख्य सम्मत व्यापक प्रकृति भी प्रचुरतम शक्ति संपन्न है। वही सृष्टि का मूल उद्गम है। वह अपनी विभुत्व शक्ति से देव मनुष्य तिर्यक आदि भिन्न भिन्न योनि के देह धारण में पृथक पृथक लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर की व्यवस्था करती है। यह सूक्ष्म शरीर 13 करणों वाला है। प्रकृति के कार्य सूक्ष्म शरीर का प्रकृति से तादात्म्य संबंध होने के कारण उसे भी प्रकृति की विभुत शक्ति प्राप्त रहती है, जिसके फलस्वरूप सूक्ष्म शरीर में अनेक प्रकार के शरीरों को ग्रहण करने की सामर्थ्य आ जाती है। वह नट की तरह विभिन्न योगियों के शरीरों में संसरण करता है, अर्थात जिस प्रकार एक ही नट पर्दे के पीछे भिन्न भिन्न प्रकार की वेशभूषाओं से देव, मनुष्य, विदूषक आदि का स्वरूप धारण कर दर्शकों के समक्ष अभिनय प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर हस्ती के उदर में प्रवेश कर हस्ती बन जाता है, स्त्री के शरीर में प्रवेश कर स्त्री अभिनय करता है, तथा वही पुरुष के शरीर में प्रवेश कर पुरुष का स्वांग रचता है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर अनेक स्थूल शरीरों में किस प्रकार संसरण करता है यह समझ में आ जाता है। भाव निरूपण कारिका। सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माद्याः दृष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः। अन्वय। भावाः सांसिद्धिकाः प्राकृतिकाः वैकृताश्च तत्र धर्माद्याः करणाश्रयिणः दृष्टाः कललाद्याश्च कार्याश्रयिणो दृष्टाः। कारिकार्थ। भाव तीन प्रकार के हैं, सांसिद्धिक भाव, प्राकृतिक भाव तथा वैकृत भाव। धर्मादि भाव बुद्धिकरण के आश्रय से रहते हैं तथा कललादि भाव शरीराश्रित होते हैं। भाष्य। भावैरधिवासितं लिंगं संसरतीत्युक्तं ततः के भावाः इत्याह। भावाः त्रिविधाः चिन्त्यन्ते, सांसिद्धिकाः, प्राकृतिकाः, वैकृताश्च तत्र संसिद्धिकाः यथा भगवतः कपिलस्यादि सर्गे उत्पद्यमानस्य चत्वारो भावाः सहोत्पन्नाः धर्मो ज्ञानं वैराग्यं ऐश्वर्यमिति प्राकृताः कथ्यन्ते। ब्रह्मणस्य त्वारः पुत्रा सनक सनंदन सनातन सनत्कुमारा बभूवु तेषाम् उत्पन्न कार्यकारणानां शरीरिणां षोडश वर्षाणामेते भाव शत्वारः समुत्पन्नाः तस्मादेते प्राकृताः। तथा वैकृता यथा आचार्य मूर्ति निमित्तं कृत्वा स्मदादीनां ज्ञानमुत्पद्यते ज्ञाना द्वैराग्यं वैराग्यर्धमः धर्मादैश्वर्यमिति आचार्य मूर्तिरपि विकृतिरिति तस्माद् वैकृताः एते भावा उच्यन्ते। यैरधिवासितं लिंगं संसरति एते चत्वारो भावा सात्विकाः तामसा विपरीताः सात्विकमेतद्रूपं तामसं स्माद्विपर्यस्तम् इत्यत्र व्याख्यातः एवमष्टौ धर्मौ ज्ञानं वैराग्यं ऐश्वर्यधर्मो ज्ञान वैराग्यं अनैश्वर्यमित्यष्टौ भावाः क्व वर्तन्ते। दृष्टाकरणाश्रयिणः बुद्धिकरणं तदाश्रयिणः एतदुक्तम् अध्यवसायो बुद्धि धर्मो ज्ञानमिति कार्यं देहस्तदाश्रया कललाद्या ये मातृजा इत्युक्ताः। शुक्रशोणितसंयोगे विवृद्धिहेतुकाः बुद्बुद्मांस पेशी प्रभृतयः तथा कौमार यौवनवस्त्र विरत्वादयो भावा अन्नपान रस निमित्ता निष्पद्यन्ते, अतः कार्याश्रयिण उच्यन्ते अन्नादि विषय भोग निमित्ता जायन्ते। गौणपाद भाष्य का भावार्थ। 40वीं कारिका में भावैरधिवासितं लिंगम द्वारा सूक्ष्म शरीर को आठ भावों से युक्त बतलाया गया है। उसी संदर्भ में वर्तमान कारिका द्वारा आचार्य ईश्वर कृष्ण भाव कितने हैं और वे किसके आश्रय से रहते हैं, इन शंकाओं का समाधान करते हैं। भावों का वर्गीकरण। सर्वप्रथम आचार्य गौणपाद ने भावों के तीन विभाग किए हैं, सांसिद्धिक भाव, प्राकृतिक भाव तथा वैकृत भाव। सांसिद्धिक भाव ये हैं जो उन्मत्त सुलभ होते हैं, जैसे सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न भगवान कपिल के ज्ञानादि भाव जन्म सिद्ध थे, अर्थात ज्ञानादि भाव विपुलता के साथ ही उनका जन्म हुआ था, अतः वे उनके सांसिद्धिक भाव कहे जाते हैं। प्राकृतिक भाव वे हैं जो जन्म के पश्चात स्वभावतः प्रयत्न निरपेक्षतः उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा के चार मानस पुत्रों सनक, सनंदन, सनत कुमार तथा सनातन के प्राकृतिक भाव माने जाते हैं, सांसिद्धिक भाव नहीं, क्योंकि वे जन्मतः ज्ञानादि से संपन्न नहीं थे। उनमें देह धारण के अनंतर 16 वर्ष की अवस्था में दिव्य ज्ञानादि का आविर्भाव हुआ था। वैकृत भाव वे हैं जो प्रयत्न साध्य होते हैं। एक शब्द में औपदेशिक ज्ञानादि भावों को वैकृत कहा गया है, जैसे पूज्य गुरुजन के उपदेश द्वारा शिष्यों में ज्ञान ज्योति जागृत होती है। ज्ञान के उत्पन्न होने पर वैराग्य और वैराग्य से धर्म की ओर प्रवृत्ति होती है। धर्म भाव की पराकाष्ठा काल में एक शक्ति विशेष उत्पन्न होता है जिसे ऐश्वर्य कहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के विकार स्वरूप आचार्य आदि की अमृतवाणी से शिष्यों में वैकृत भाव का आविर्भाव होता है। तदतिरिक्त सांसिद्धिक तथा प्राकृतिक भाव अनौपदेशिक होते हैं। भाव के वर्गीकरण में मतभेद। भाव के ऊपरी लिखित त्रिविध वर्गीकरण में आचार्य गौड़पाद माठर वृत्तिकार का प्रभाव परिलक्षित होता है, लेकिन सांख्यकारिका के परवर्ती टीकाकारों को यह मत मान्य न हुआ। उनकी दृष्टि में दो ही भाव हैं, सांसिद्धिक भाव तथा वैकृत भाव। वे कारिका में आए प्राकृतिक शब्द को सांसिद्धिक भाव का ही स्वरूप परिचायक मानते हैं। विवाद का यह स्थल भूमिका में निर्णित हो चुका है। भाव के आश्रय चार सात्विक भाव धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य तथा चार तामस भाव अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, बुद्धियाश्रित हैं। सांख्य शास्त्र में आठ ही भावों की चर्चा मिलती है। बुद्धि को करण कहा जाता है, यह पीछे बतला चुके हैं। अध्यवसायो बुद्धि 23वीं कारिका के द्वारा बुद्धि तथा धर्मादि भाव का आधार आधेय भाव संबंध भी कथित हो चुका है। यहाँ इतना विशेष ज्ञातव्य है कि बुद्धि तथा धर्मादि का संबंध भूतल एवं घट के आधार आधेय भाव संबंध की भांति नहीं है। भूतल और घट में अत्यंत भेद है, अतः घट के बिना भी भूतल रहता है और भूतल को छोड़कर घट अन्यत्र भी रह सकता है, लेकिन बुद्धि और धर्मादि में अत्यंता भेद है। बुद्धि धर्मादि से पृथक होकर नहीं रह सकती है, क्योंकि धर्मादि बुद्धि के स्वरूप हैं। यह सिद्धांत है कि जो जिसका स्वरूप होता है उसे उससे पृथक नहीं किया जा सकता है। अतः बुद्धि और धर्मादि की उपर्युक्त आधार आधेय भाव परक भेद विवक्षा व्यवहारतः समझ लेनी चाहिए। कुछ ऐसे भी भाव हैं जो देहाश्रित होते हैं, ये माता पिता के संयोग से उत्पन्न बच्चों में दिखाई देते हैं। फलतः बुद्बुद, मांसपेशी, करंड, अंग, प्रत्यंग ये माता पिता के रजवीरे के मिश्रण से उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार गर्भ से बाहर निकले शिशु में दुग्धादि आहार के प्रयोग द्वारा जो बाल्य, कौमार्य, यौवन तथा वार्धक्य आदि अवस्थाएं दृष्टिगत होती हैं, वे ही भाव पद से कही गई हैं। इस प्रकार भावों का आश्रय कौन है, यह जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। धर्मादि भावों का फल कारिका। धर्मेण गमन मूर्ध्वम गमनम धस्ताद भवत्य धर्मेण ज्ञानेन चापवर्गो विपर्यादिश्यते बंधः। अन्वय धर्मेण ऊर्ध्वम गमनम अधर्मेण अधस्तात गमनम भवति ज्ञानेन च अपवर्गो भवति विपर्यात बंधः इष्यते। कारिकार्थ धर्म से ऊर्ध्वलोक की ओर गमन होता है, अधर्म से अधोलोक की ओर गमन होता है, ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है तथा विपर्यय अर्थात अज्ञान से बंध होता है। भाष्य निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेनिति यदुक्तम मत्रोच्यते धर्मेण गमन मुद्ध्वम धर्म निमित्तम कृत्योर्ध्व मुपनयति ऊर्ध्वमित्यष्टौ स्थानानि गृहन्ते तद्यथा वायम प्राजापत्यम साम्य मैंद्रम गांधर्वम याक्षम राक्षसम पैशाचमिति तत सूक्ष्मम शरीरम गच्छति पशु मृग पक्षी शरीर सिप स्थावर अन्तेस्व धर्मो निमित्तम किंच ज्ञानेन चापवर्गः अपवर्गस्य पञ्चविंशति तत्त्वज्ञानम् तेन निमित्तेनापवर्गो मोक्षः ततः सूक्ष्मं शरीरं निवर्तते। परम आत्मा उच्यते विपर्यादिश्यते बंधः अज्ञानं निमित्तं स चैष निमित्तकः प्राकृतिको वैकारिको दाक्षिणिकश्च बंध इति वक्षति पुरस्तात् यदि मुक्तं प्राकृतेन च बंधेन तथा वैकारिकेण च दाक्षिणेन तृतीयेन बद्धो नायन्येन मुच्यते। गौणपाद भाष्य का भावार्थ। 42वीं कारिका में नैमित्तिक निमित्तिक प्रसंगेन के द्वारा सूक्ष्म शरीर का संसरण बतलाया गया है। संप्रति धर्मादि निमित्तकों में से प्रत्येक का पृथक पृथक फल बताया जा रहा है। भावस्थानी धर्म रूप निमित्त से सूक्ष्म शरीर ऊपर की ओर जाता है। इस प्रकार धर्म का फल ऊर्ध्वात्युर्ध्व लोकों की प्राप्ति है। शास्त्रों में 8 ऊर्ध्व स्थानों का वर्णन उपलब्ध होता है। 8 ऊर्ध्व स्थान इस प्रकार हैं: वाह्य प्राजापत्य सौम्य इंद्र गांधर्व यक्ष राक्षस तथा पिशाच। धर्म का प्रतिद्वंदी अधर्म धर्म से विपरीत फल प्रदान करता है। लिंग शरीर को अधोलोक की ओर ले जाने वाला यही अधर्म है। अधोलोक के अंदर अतलादि आते हैं। अधर्म का फल पशु मृग पक्षी सरीसृप एवं स्थावर योनि जाति भी प्राप्त कराना है। बुद्ध्याश्रित भाव में यदि ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी, क्योंकि तज्जन्य फल मोक्ष आत्यंतिक एवं एकांतिक होता है। ज्ञान पद का अर्थ सांख्य शास्त्र सम्मत प्रकृति पुरुष का अपरोक्षात्मक भेद ज्ञान है। अज्ञान प्राणी को संसार रूपी बंध जन रज्जु से बांधता है। बंध 3 प्रकार का है: प्राकृतिक बंध, वैकारिक बंध तथा दाक्षिणिक बंध। शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख हुआ है। निमित्त नैमित्तिक की दृष्टि से उपर्युक्त आशय को इस प्रकार कह सकते हैं: धर्म निमित्त तथा ऊर्ध्वगमन नैमित्तिक है, अधर्म निमित्त तथा अधोगमन नैमित्तिक है, ज्ञान निमित्त तथा अपवर्ग नैमित्तिक है, अज्ञान निमित्त तथा बंध नैमित्तिक है। कारिका।